नमस्कार साथियों, मैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से योगेंद्र मोहरसिया और आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी छिंदवाड़ा। साथियों, हम जैसे कि आपको बता रहे हैं कि हम लोग समय समय पर शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों से आप लोगों को मिलाते हैं। उसी कड़ी में आज हम छिंदवाड़ा जिले की जानी मानी हस्ती, वरिष्ठ शिक्षाविद, एक मोटिवेशनल स्पीकर श्री प्रोफेसर अमर सिंह जी से बात करते हैं और साझा करते हैं मोबाइल वाणी का मंच उनके साथ में, और जानते हैं कि जीरो से जीवन में हीरो कैसे बने, विषय पर विशेष बातचीत। तो हम मोबाइल वाणी के मंच पर प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू योगेंद्र जी।
सर, एक ये था प्रश्न, ये था सर कि जैसे कि ये जो विषय है कि जीरो से जीवन में हीरो कैसे बना जाए या शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा जाए, ये जो एक लंबी यात्रा का जो विषय है सर, इसको कैसे आप देखते हैं आपके नजरिए से?
यस, है ना, जीरो से हीरो बनना एक कंसेप्ट है
जी।
एक्चुअली हम लोग सूचनाओं के माध्यम से
बिल्कुल
अपनी जिंदगी जीते हैं।
बिल्कुल सर।
एक्चुअली होना ये चाहिए
जी,
सूचनाएं व्यवहारिक रूप से आदमी के काम नहीं आती।
बिल्कुल सर।
हमारे व्हाट्सएप पर भी ढेरों सूचनाएं आती हैं
जी,
लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उन सूचनाओं को अपने कार्यों के प्रयोजन हेतु उनको उस तरह से ढाल लेना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को और परिपक्वता प्रदान करेंगे और ज्ञान को मांजेंगे तो फिर विद्या बनेगी।
बिल्कुल।
और विद्या को और ज्यादा परिपक्वता, जब अपने वाक्यों को, अपने संदर्भों को, अपने सोच को परिपक्व बनाएंगे तब वो विवेक बनता है। तो विवेक के साथ अब हमें देखना ही होगा, विवेक से भी ऊपर एक चीज है, उसको मेधा बोलते हैं।
मेधा।
जैसे हमारे धर्म शास्त्र जितने भी हैं वो सब मेधावी ज्ञान है। तो हमें इन टूटी फूटी चारों तरफ से आंधियों के रूप में आती हुई सूचनाओं को इतना परिपक्व अपने लक्ष्य को साधने में बना देना है कि वो मेधावी ज्ञान हो जाए। और इसको इंग्लिश में कंसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं और हिंदी में इसको अवधारणात्मक ज्ञान बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक छोटा सा सेंटेंस है, काम ही पूजा है लेकिन पूजा ही काम नहीं है। एक छोटा सा सेंटेंस है, ये मेधावी ज्ञान है। मतलब हजारों सालों तक आदमी ने जब काम किया होगा तो उस काम को करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे आया कि पूजा करना काम एक बार नहीं हो सकता है लेकिन काम करना पूजा होता है। तो इसी तरह का अवधारणात्मक ज्ञान, कंसेप्चुअल जो नॉलेज है, जब हमारे छात्रों में, युवाओं में और हर व्यक्ति के पास जब ये ज्ञान होगा, और ज्ञान जब ये होगा तो अपने दिमाग में उस तरह के विचार आएंगे, और विचार से सीधा संबंध हमारे कर्मों से जुड़ा है, और कर्मों का सीधा संबंध रिजल्ट और परिणाम से जुड़ा है। तो अगर हमारे परिणाम गलत आते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारा चिंतन जो था वो मेधावी नहीं था।
बिल्कुल।
तो ये है कि चिंतन को मेधावी बनाए, और जो व्यक्ति चिंतन को मेधावी बना लेता है वो ही जीरो से हीरो बनने के पथ पर अग्रसर होकर चलने लगता है। ये बात थी।
सर, एक छोटी सी बात, एक दिमाग में प्रश्न आया है कि जीरो किस को आप कैसे देखते हैं, मतलब आपके नजरिए से जीरो को क्या मानते हैं?
यस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जीरो का अपने में कोई स्वतंत्र महत्व नहीं है और वजन नहीं है, जैसा कि हम गणित में भी देखते हैं। जीरो के आगे कुछ लिखा जाएगा, एक से लेकर नौ तक लिखा जाएगा तो उसकी वैल्यू बनेगी, और जीरो के पीछे कितने भी लिख दिए जाएंगे तो भी उसकी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो हम, जैसा कि मैंने सूचनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था, हम सब आज के समय में सूचनाओं के अंबार के नीचे दबे पड़े हैं। सूचनाओं का हर जगह विस्फोट हो रहा है, और इस सूचनाओं के विस्फोट में हम डाउट में पड़े हैं, कंफ्यूजन में हैं, और सूचनाओं के वजन के कारण हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें एक्चुअली करना क्या है। तो बहुत ज्यादा जब सूचनाएं आ जाती हैं तो एक्शन लेने की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। गांधी जी ने भी उसी बात को कहा था कि जितना सोचो सुबह उतना शाम तक कर लो, दूसरे दिन फिर सोचो फिर कर लो। अगर ज्यादा सोचोगे और कम कर पाओगे तो सोचने और करने के बीच में जितना बड़ा गैप होगा वो दुख की असली वजह होगी, वो तनाव अवसाद की असली वजह होगी। ये मेरा जीरो से जीरो का कंसेप्ट था।
जैसे सर अभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर अभी बात करते हैं या हम बहुत सारे चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि वो भी शून्य से शिखर की ओर ले जाने की बातें बताते हैं बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ही रहता है सर कि क्या व्यवहारिक ज्ञान एक साधन हो सकता है या साध्य है कि बच्चा जो है वो आगे बढ़ जाएगा या शिखर तक पहुंच जाएगा?
यस, बहुत आज का जो समय है मोटिवेशनल स्पीकर का जॉब बहुत जबरदस्त तरीके से उभर रहा है।
बिल्कुल,
इसके पीछे क्या होती है, सोसाइटी में वो ही चीज सबसे स्पीड से ऊपर आती है जिसकी सोसाइटी को जरूरत होती है। आप देख लेना होगा बहुत सारे साधु संत भी पुराने समय के उपदेश न देकर उन्होंने वे अपने को भी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में चैनलाइज कर लिया है, बदल लिया है। क्योंकि दिक्कत यह हो रही है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के बढ़ने के साथ, डिजिटल तकनीक के आने के साथ, इंफॉर्मेशन तकनीक के विस्फोट के साथ ज्ञान तो बहुत आ रहा, लेकिन हमारी ज्ञान को पचाने की जो क्षमता है वो न के बराबर है या बहुत कम है। वैसे भी सामान्य भाषा में कहा जाता है कि हर व्यक्ति जितना जानता है उसका 5% ही अपने उपयोग में लाता है, बाकी का तो सब पर उपदेश कुशल बहुतेरे में रहता है। तो कहा गया कि एग्जीक्यूशन इज द सुपर पावर। आप अच्छे आइडिया लीजिए, उन आइडिया को एग्जीक्यूट कीजिए, काम में लाइए, उसके जो रिजल्ट आएंगे तो आप सुपर पावर बन सकते हैं। ये मेरा कंसेप्ट था।
एक और छोटा सा एक सोच, मतलब एक सुना हुआ वाक्य है, और चूंकि आप अंग्रेजी के एक अच्छे विशेषज्ञ भी हैं तो मेरा खुद का भी एक प्रश्न है आपसे कि सर लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, क्या इसको इससे कहीं मर्ज करके देखते हैं?
या ठीक है, कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, होता ये है। और आज ये चीज बहुत ज्यादा प्रभावी इसलिए भी हो गई है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट इसलिए भी हो गई है कि हमारा समाज जो है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, हमारे भारतीय समाज की मानसिकता है, हम सबकी भी मानसिकता है कि जब तक जबरदस्त तरीके से बीमार नहीं पड़ेंगे, जब तक उठना बैठना बंद नहीं होगा, तब तक हम बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये सबकी आदत है। अब होता क्या है कि बीमारी आपको बड़ी है, उसके लक्षण सामने आ रहे हैं, उसे आप झुटला रहे हो, और नहीं भी झुटला रहे तो उस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो जहां इलाज सस्ता है या डॉक्टर बहुत बड़ी क्वालिटी का नहीं है, छोटा डॉक्टर है। तो देखिए, डॉक्टर तो कोई भी हो, कितना छोटा भी डॉक्टर हो, वो भी तुम्हें कैंसर की दवा जरूर देगा। वो अपने मरीज को निराश होके नहीं जाने देता, आप दोबारा उसके पास आओ या नहीं आओ। तो होता क्या है, एक सर्वे के अनुसार ऐसा देखा गया है 75% बीमार लोगों की मृत्यु सिर्फ इसलिए होती है कि वो जो उनको बीमारी है उसका सही डायग्नोस नहीं हो पाता, विश्लेषण नहीं हो पाता, और वो सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते। मेरा संबंध टाटा हॉस्पिटल जो मुंबई में है, कैंसर हॉस्पिटल से है, मैं वहां जाता हूं मेरे एक अपने मित्र को लेकर, तो मेरा उन डॉक्टर से भी बात हुई तो वो भी ये कहते हैं कि कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पर हमें पता लग जाए और मरीज हमारे पास आ जाए तो हम उसे नई जिंदगी दे देंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कैंसर के स्पेशलाइज डॉक्टर टाटा हॉस्पिटल से बड़े इंडिया में कहीं नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन है, टाटा जी ने उसे इसी के लिए बनाया। लेकिन होता क्या है, जब हम छिंदवाड़ा में या हमारे मध्य प्रदेश को लोग, इनकी आखिरी दौड़ भोपाल तक रहती है, या हम छिंदवाड़ा के लोग ज्यादा से ज्यादा नागपुर चले जाएंगे, नागपुर में भी कैंसर के स्पेशलिस्ट नहीं है। तो होता क्या है, हम स्पेशलिस्ट के पास न पहुंचकर दोयम दर्जे के डॉक्टर से इलाज कराते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान कराते हैं सामान्य जीवन में, तो वो एक्सपर्ट की सलाह नहीं होती, अंत में रिजल्ट नेगेटिव आता है और खर्चा और समय उतना हो चुका होता है। इसी को कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग।
बिल्कुल सर। तो एक और ये है सर कि थोड़ा सा आप अपने बारे में भी हमारे मोबाइल वाणी के श्रोताओं को बता, चूंकि मोबाइल वाणी परिवार तो आपका सदैव रेडी रहा है कि आप हमेशा अपना बहुत समय हमको देते रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोबाइल वाणी के श्रोता भी आपके बारे में जाने।
अच्छा, थैंक यू। वैसे तो अपने बारे में बोलना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अच्छा तब लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरे लोग हमारे बारे में बोलें, लेकिन क्योंकि आप मोबाइल वाणी से जुड़े हुए हैं, कोई भी श्रोता होगा, तो मैंने तो अपना जीवन जीरो से शुरू किया, पहले ही बता चुका हूं। मेरे पेरेंट्स कालाक्षर भैंस बराबर थे, कभी स्कूल नहीं गए, आर्थिक दृष्टि से भी हम जिस परिवार में पैदा हुए वो इतना आर्थिक दृष्टि से कमजोर था कि दसवीं के बाद मुझे पढ़ने के लिए घर से पैसे नहीं मिले, तो मुझे सेल्फ मेड बनना पड़ा, खुद ही कमाना पड़ा, खुद ही पढ़ना पड़ा, उसी की बदौलत आज यहां बैठा हूं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने श्रोताओं से कि एक आदमी है, खुदा जब हमें भेजता है, अगर नर को नर बना के खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमारे अंदर नारायण बनने की सारी संभावनाएं मौजूद है।
बिल्कुल बिल्कुल।
और नारी के रूप में अगर हमें भेजा है तो हमें नारायणी बनने की सारी संभावनाएं मौजूद है, और विकास की सारी संभावनाएं, सारी शक्तियां हमारे अंदर मौजूद होती हैं। शिक्षा एक ही काम करती है कि शिक्षा हमारे शरीर के बाह्य परत में जो धुंध भरा आवरण पड़ा होता है उस आवरण को हटाती है और अंदर जो भगवान बनने की जो संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं को विकसित करती है। मैं इसी कंसेप्ट पर अपने छात्रों को, युवाओं को, अथवा जहां मैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट यही ट्रांसफर करता हूं, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि संभावनाओं का उदय करना एक शिक्षा का काम है। अंबेडकर जी ने, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने अपनी संभावनाओं को विकसित कर समाज के लिए चमत्कारी काम किया है। ये कोई भी कर सकता है, बशर्ते वो लीक और वो रास्ता पकड़ ले।
श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोफेसर अमर सिंह जी को, प्राचार्य शासकीय गवर्नमेंट शासकीय महाविद्यालय चांद के प्राचार्य प्रोफेसर अमर सिंह जी को, और आपने बड़ी संक्षिप्त बातों में बहुत बड़ी बातें हम लोगों के जीवन के लिए बताई हैं कि शून्य से शिखर तक हम सूचनाओं, संचार के माध्यम से या अपने विवेक के माध्यम से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित ही हम लोग इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे और सफल बनेंगे। सर, मोबाइल वाणी के मंच पे आपके आगमन पर बहुत बहुत आभार।
थैंक यू सभी, आपका भी बहुत बहुत आभार, और मिलते रहेंगे। और मेरा कहना आपसे ये है कि कभी भी इस तरह से युवाओं को प्रेरित करने के लिए, समाज के लिए, कभी भी अगर आपको मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।